देखते हैं तफसीर आयत आले इमरान।
अब आती है अल्लाह ताला उन लोगों को, देखें जब ईमान वालों की बात आती है ना, ये जैसे आगे बात आ रही है, जब भी कहा जाएगा ना ईमान वाले, तो ईमान वालों में सारे ही लोग हैं, जो कमजोर ईमान वाले हैं, जो मुश्किल से चल रहे हैं, जो अबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जैसे ईमान वाले हैं, सब ईमान वाले हैं। अब उनको जो जिन्होंने ऐसी बातों में जो आ रहे हैं, आप देखें कि अब इस वक्त क्या बातें हो रही थी मदीना में, क्या बातें होनी शुरू हो गई। जो मुनाफिकीन थे और जो यहूद थे ना, उनको बस समझने एक मौका हाथ आ गया कि लो जी देखो जी, ये कहते अल्लाह के पैगंबर हैं, तो अल्लाह के पैगंबर हैं फिर इनको कैसे शिकस्त हो गई, फिर इनके साथ कैसे ये हो गया, और ये क्या हुआ कि जो है ना फिर ये इस दीन का क्या, फिर क्या इसके अंदर सच्चाई रह गई कि ये तो इतनी इनको मतलब शिकस्त से दो चार होना पड़ा, पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, इतने लोग शहीद हो गए, ऐसा हो गया, तो ये क्या फिर बात हुई। तो अब मुनाफिकीन ने बहुत बातें बनानी शुरू कर दी थी, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा। अगर सच्चे नबी होते तो क्यों शिकस्त खाते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज भी है ना। आज दुनिया में कई लोग कहते हैं अगर इस्लाम सच्चा दीन होता तो ये आज इस तरह जलील हो रहा था दुनिया में। और उन्होंने भी कहा ये बस देखो जी, ये चंद दिन का जोश था नौजवानों का, बस अब ये जोश ठंडा पड़ गया, ऐसे ही थोड़े से लोगों को मरवाने के लिए ले गए, जब पता था आगे से इतनी बड़ी कुव्वत आ रही, क्या जरूरत थी इनको ले जाके उनसे टकराने की, और अगर ये अल्लाह के नबी थे इनका फैसला कैसे गलत हो गया। फिर ये इनकी सारी इनकी गलत पॉलिसीज हैं, इसकी वजह से हुआ, इन्होंने गलत डिसीजन लिया, जाके बाहर लड़ना ही नहीं चाहिए था। देखें जब लीडर के खिलाफ लोगों को कर दिया जाए ना, और लोगों के दिलों में बदगुमानियां डाल दी जाए, वो फिर बस काम ही पूरा हो गया दुश्मनों का, फिर और क्या रह गया। आज भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या किसी भी और, आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, कोई जगह देख लें जहां पे लोग मिल के काम कर रहे हैं, अगर उनके लीडर से ही लोगों को बदजन कर दिया जाए तो सबका शिराजा बिखर जाएगा, वो काम नहीं सही हो सकेगा। तो अब यहां पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को टारगेट बनाया और बदगुमानियां फैलानी शुरू कर दी, और इन बातों से बाज लोग मुतासिर भी हो रहे थे। तो देखते हैं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए, इन तुतीउ, अगर तुम इताअत करोगे। इताअत का माना यहाँ पे क्या है, एक तो इताअत होता है ना किसी की बात मान लेना, लेकिन बात मानना तो सेकंड स्टेप है, पहले इताअत में पहले बात सुनी जाती है फिर ही मानी जाएगी ना। अब जैसे हम आपको कहते हैं कि भाई आए आपको कुरान पाक पढ़े, अल्लाह की बात सुनेंगे तो इताअत करेंगे ना, वो फिर ही बात मानेंगे ना, अगर बात ही कान में नहीं पड़ती तो इताअत किस चीज की करेंगे। तो पहला स्टेप इताअत में क्या होता है कि आप बात को सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, फिर इताअत होती है। तो इन तुतीउ, अगर तुम इताअत करोगे यानी सुनोगे उनकी बातें और फिर उसके मुताबिक उसका असर कबूल कर लोगे, उनकी बातों को सुन के उनको मान लोगे, वैसे ही करना शुरू कर दोगे। इनकी अल्लदीन कफरू, उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, यानी मुनाफिकीन और ये यहूद और जिन्होंने ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हुआ था यानी दीन के मामले में, या रुद्दुकुम अला आकाबिकुम, वो फेर देंगे तुमको तुम्हारी एड़ियों के बल, फतनक़लिबू खासिरीन, तो तुम लौट जाओगे खसारा पाने वाले होके, यानी जहन्नमी बन जाओगे तुम अगर तुमने इनकी बातों को लिया, इसका असर लिया। कब होता है लोगों की बातों का असर, उनके इस किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडा का असर कब होता है, जब इंसान का अपना अंदर कमजोर हो, तब कोई भी कोई बातें करता है तो दिल पे लग जाती है। क्यों कबायर सहाबा जो थे, अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर, अली, इनके क्यों नहीं दिल मुतासिर हुए, इसलिए कि वो चट्टान की तरह थे, उनको कोई हिला नहीं सकता था, वो रब्बानी थे, इसलिए कहने वाले भी डरते थे कि इनको ना कहें। मगर जहां पे पता होता है ना कि यहां पे इमारत कमजोर है, एक धक्का देंगे तो गिर जाएगी, वहां पे काफिर अपना जोर लगाता है फिर, और आज भी यही हो रहा है। आज हमारे नौजवानों के लिए इंटरनेट पे ऐसा प्रोपोगेंडा किया जाता है जिससे वो इतने मुतासिर हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को डाउटफुल बना दिया जाता है, उन पे क्रिटिसाइज किया जाता है, और ऐसे बातों बातों में कि जैसे कि वो बड़े मासूम हैं और उनको नहीं पता। अच्छा, ऐसे तुम्हारे नबी ने किया? अभी पिछले दिनों ही के एक लड़का रिवर्टेड मुस्लिम, तो उसने मेरे से सवाल किया कि बनू कुरैज़ा पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको कत्ल करा दिया था, तो ये कितना बड़ा जुल्म था, तो आप इसको किस तरह बताती हैं? अब देखें, जिसने सीरत ना पढ़ी हो, जिसको पता ना हो कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो तो फिर इन नेगेटिव, अब उसने जाहिर है बैठ के कहीं इंटरनेट पे ही देखा, या जिसने भी उसको कहा, जिसको जाहिर है इस्लाम की इतनी डिटेल पता थी कि बनू कुरैजा का पता है और सारा पता है, तो उसी ने इसको बहकाने की कोशिश की ना। तो वो लोग खुद तो अपना पूरा होमवर्क करके रखे होते हैं। अब हमारे बच्चों को, जवानों को, हमारे जवानों को तो छोड़ ही दें, हमारे तो डेढ़ उमर लोगों को नहीं पता, उनको नहीं सीरत का पता, उनको नहीं पता क्या था इस्लाम के अंदर, क्या चीज कैसे है और इसके पीछे क्या असल वाकया था। तो जब ऐसे लोगों के साथ वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो डाउटफुल हो जाते हैं, और फिर उनपे जब एतराजात ऐसी हस्तियों पे किए जाते हैं, कभी सहाबा के ऊपर, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जाहिर है फिर दिल मुतासिर हो जाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, खुदा के लिए सीरत को पढ़ें और अपने दीन को भी समझें, वरना इस्लाम दुश्मन कल भी कोशिशों में लगे थे और आज भी उन्होंने अपनी कोशिशें तो नहीं छोड़ी। जाहिर है शैतान तो वही है ना, शैतान तो है मौजूद, और वो बस क्या चाहती है, यरुद्दुकुम अला आकाबिकुम, तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल फेर दे, यानी तुम मुसलमान ना रहो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो मर्जी, वो ये नहीं कहते हमारे दीन में आ जाओ, कहते बस मुसलमान ना रहे। और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी नजर आ रहे हैं। और वजह इसकी क्या है? वजह इसकी यही है कि हमने अपने दीन को खुद नहीं समझा, हम खुद इतने, अब वो हमारे दीन को पढ़ के और उसमें से ऐसी चीजें निकालते हैं और हम नहीं जानते कि हमारा दीन है क्या। तो वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं मगर ये चराग उनकी फूंकों से बुझने वाला नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। जब तक आपके जैसे लोग मौजूद होंगे ना, जो अपने घर बार, बच्चे, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जॉबें, सब चीज के आगे दीन को अहमियत देंगे, जब आप जैसे लोग वक्त अपना निकालेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे इल्म लेने के लिए, अपना माल लगाएंगे, अपनी औलादों को इस रास्ते में लगाएंगे, सब कुछ जब तक आप लगाने को तैयार होंगे ना, तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो हिलाने की कोशिशों से बाज नहीं आएंगे। कभी ये ना समझें कि वो चुप करके बैठ जाएंगे, मगर आगे से होना क्या चाहिए कि उनको मुंह की खानी पड़े, वो कह उठे कि ये मुसलमान बड़े पक्के हैं, बड़े अपने दीन में पक्के हैं, इनको जितना मर्जी कुछ कह लो ये तो हिलते ही नहीं। सच्ची बात यह है कि मुझे आज के मर्दों से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं, वो माश के चक्करों में इतने पड़े हैं कि उनको तो अपना आप ही भूला हुआ, जो बच्चे जवान हो चुके हैं उनसे भी कम ही उम्मीद है। उम्मीद है तो आप जैसे लोगों से कि जो आज सीख रही हैं, जो आज अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचा सकती है, इससे इस उम्मत की तकदीर बदल सकती है। आप चाहे माँ हैं, चाहे दादी हैं, चाहे नानी हैं, आपकी की भी आज की मेहनत कल उजड़े बाग में बहार ला सकती है। अपनी जिंदगी का इसको मिशन बनाएं और इस मिशन को लेके उठें। अब बस कर दें ये दौड़े फैशन की, बस खूबसूरत से खूबसूरत नजर आने की, कमाइयों की, स्टेटस की, घरों की, बस डेकोरेशन ही हर वक्त हो, बड़े से बड़ा घर, फोन मेरा लेटेस्ट हो, ब्रांड नेम मेरा ये हो। अगर कुरान पढ़ने वाले भी इन्हीं दौड़ों में लगे रहें तो इस उम्मत की डूबती कश्ती को कौन पार लगाएगा, मुझे बताएं। मर्द सुस हो गए हैं। एक आलिम साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम जो क्लासें शुरू करते हैं उनमें बस औरतें ही भर जाती हैं, मर्द इक्का दुक्का कोई आते हैं। तो अब इस उम्मत की औरतों आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने अपने लिए नहीं सिर्फ जीना, आपने अल्लाह के दीन के लिए जीना। इमाम इब्ने उकैल हम्बली फरमाते हैं कि मैंने लोगों के हालात देखे तो बड़ा अजीब मुझे लगा कि लोग घरों के उजड़ने पे रोते हैं, प्यारों की मौत पे आहें भरते हैं, माशी तंग दस्ती पे हसरतें करते हैं, हालांकि वो देख रहे हैं इस दीन की इमारत गिर रही है, लोग फिरकों में बट चुके हैं, सुन्नतें मिट चुकी हैं, गुनाहों और बेहयाओं की कसरत है, शिर्क और बिदात का गलबा है, लेकिन फिर भी दीन के लिए रोने वाला कोई नहीं है, दीन के लिए अपनी जिंदगी लगाने वाला कोई नहीं, अपना वक्त खर्च करने वाला कोई नहीं। और वो कहते हैं कि इसकी एक वजह मैं ये देखता हूं कि दीन उनकी नजरों में हल्का हो गया, और दीन इनकी फिक्रों का महवर नहीं है, दुनिया इनकी फिक्रों की महवर बन गई, यानी जिसके गिर्द उनकी सारी सोच घूमती है वो दुनिया है। तो मैं आप सबसे बड़े दर्द से ये कहना चाहती हूँ कि ये कुरान की तालीम को ना एक कोर्स समझ के ना करें कि कोर्स कर लिया, कोर्स कब खत्म होना है, कोर्स कब होगा, कितने महीने रह गए, कितने साल रह गए, नहीं, एक मिशन समझ के इसको हासिल करें कि मैंने दीन को रिवाइव करना है, जिंदा करना। याद रखें कोई और किसी ने नहीं करना ये काम, मुझे और आपको ही करना है। ये ना दूसरों की तरफ ना देखें, वो मौलाना करेंगे, वो ये करेंगे, अगर वो कर सकते होते तो आज तक हो चुका होता, नहीं होना उस तरह से। मुझे और आपको ये सोचना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बस मैंने ही करना ये काम, ठान ले ये, और इसके लिए अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह किसी काम का बना दे। तो बात सिर्फ गजवाए उहद की नहीं है, बात आज की भी है। और देखिए इसके पीछे बात वही होती है, जब अपना अंदर भी कमजोर है तब फिर दूसरों से इंप्रेस ही होना, या दूसरों की हर चीज ही अच्छी लगती है। जब अपनी इमारत में दराड़ें पड़ी हुई हैं तो दूसरों से आप इंस्ट्रक्शन लेंगे, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनसे लो, क्योंकि अपना अपना दीन हल्का है ना, अपने दीन को तो कुछ समझते नहीं है। तो जरूरत है कि हम पहले अपने दीन को समझें, सीखें, तब इस दीन की अजमत हमारे दिल में आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, फिर किसी से भी टकराना आसान है, फिर नहीं कोई कुछ आपका कर सकता। लेकिन जब अपने ही अंदर कमजोरी है तो फिर लोगों की बातें भी मुतासिर करेंगी, उनके प्रोपोगेंडाज भी, फिर हम हर वक्त बैठे कर वो साजिश कर रहा है, यहूदियों की साजिश हो गई, फलाने की साजिश हो गई, इसकी साजिश, वो साजिशें तो करने वाले हमेशा से करते हैं। बात यह है कि हम इतने मजबूत हो जाएंगे किसी की साजिश हमें कुछ ना हिला सके। वो आजकल हमारे नौजवानों को वरगला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो हमारे नौजवान क्यों इस हालत में हैं कि उनके पास कोई भी इल्म नहीं है, उनके पास कोई भी जोरे बाजू नहीं है, वो क्यों इतने वीक हैं कि वो हर एक की बातों में ही आ जाते हैं। तो ये बात कि अगर तुमने उनको बात को सुना, बाज दफा हम कहते हैं चलो सुन के तो देखते हैं ना, कहते क्या है जरा सुने, नहीं सुनो भी नहीं, अब सुनोगे तो फिर आपके पास जब खुद नॉलेज नहीं होता आप उनको जवाब तो दे नहीं सकते, फिर मुतासिर हो जाते। तो तुम अगर इनकी बातों पे चलने लगे ना तो ये तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर के हटेंगे, और जब तुम दीन से फिर गए तो फिर उसके बाद क्या है, आज सोचते हैं कि उसके बाद जब हम दीन से फिर जाएंगे ना तो उसके बाद हम पता है क्या हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे, हमारा सॉफ्ट इमेज हो जाएगा, हम रोशन ख्याल कहलाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम दीन के से फिरते हो ना तो बड़ा खसारा है, और इसलिए ये कि दुनिया सारी भी मिल जाए और सारी दुनिया भी आपको शाबाशियां दे रही है, बड़ा अच्छा कारनामा किया, ये दीन में रखा क्या था, बड़ा अच्छा किया इसको छोड़ के, तो तब भी जहन्नुम जो है वो इतना बड़ा खसारा है, सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो खसारा इस पे भारी है। बलिल्लाहु मौलाकुम, तुम ये याद रखना, लोग काफरों की इताद क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि आए ये हमारे सपोर्टर हो जाए, ये हमारा सर्वाइवल आसान हो जाएगा, जब हाँ इनके साथ हम मिल जाएंगे ना तो फिर हमारी मदद करेंगे ये, कोई चाहे सुपर पावर है चाहे कोई माशरे के अंदर ऐसे लोग हैं, हम जस्ट इनके जैसे हो जाएं, असल में इनके जैसे होंगे ना फिर हम बहुत एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने पता है क्या बताया, ये नहीं फरमाया बल मौला कुमुल्ला, ये भी हो सकता था, मौला कुमुल्ला भी हो सकता था, अल्लाह ताला ने फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, इसका मतलब अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, कोई और तुम्हारा मौला नहीं बन सकता। मौला मतलब मददगार, सपोर्टर, हिमायती, तुम्हारा दोस्त। मौला के ना 16 माने हैं, तो अल्लाह है तुम्हारा मौला, कोई और नहीं मौला हो सकता। वह खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मदद करने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि वो तुम्हारी मदद करेगा, उधर उधर गिर रहे हैं, उधर पड़ रहे हैं, उसकी इताअत कबूल कर ली, उसकी बात मान ली, ये हमारे बुरे वक्तों में हमारे काम आएंगे, कोई नहीं आएगा। जिसको अल्लाह की मदद मिले बस वो ही कामयाब है। जब मुशरिकी ने मक्का जो है वापसी के लिए तैयार हो गए थे, तो अबू सुफियान, अब एक तरह से उन्होंने देख लिया कि मुसलमानों को तो पसपाई हो गई, अबू सुफियान उस वक्त जबले ओहद पे खड़ा होके ऊंची आवाज से कहता है, क्या तुम में मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया इसको जवाब ना देना, किसी ने नहीं जवाब दिया। फिर कहने लगा, क्या तुम में अबू कहाफा के बेटे हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक? देखें, काफिर को भी पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है। आज लोग लड़ते हैं, नहीं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो उनको गलत बनाया गया, उनको नहीं बनाना चाहिए था। नहीं, उन काफिर को भी पता है कि उनके बाद किसका नंबर आता है। फिर आपने फरमाया नहीं, कोई ना जवाब दे। फिर उसने कहा, क्या तुम में उमर बिन खत्ताब हैं? फिर आपने फरमाया कोई जवाब ना दो। अब उसने कहा, चलो अच्छा है, इन तीनों से तो फुर्सत मिली, यानी ये खत्म हो गई है। ये सुन के हजरत उमर बेकाबू हो गए, बोले अल्लाह के दुश्मन जिनका तूने नाम लिया सब जिंदा है, और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है। तो अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारे जो मकतूल हैं उनका मुसला हुआ है, म्यूटिलेशन यानी कान नाक काट दिए, आजा काट दिए, हालांकि उस जमाने में भी जंगों में इस चीज का बुरा समझा जाता था। तो कहने लगा, लेकिन मैंने इसका हुक्म नहीं दिया था, मैंने नहीं कहा था कि ये करो, मगर मैंने इसका बुरा भी नहीं माना, मैं इससे मतलब नाराज भी नहीं, अगर हो भी गया तो कोई ऐसा नहीं है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका कहा नहीं था। और उसने नारा लगाया, उसने नारा लगाया, ओलू हुबल हुबल बुलंद हो, यानी जैसे हम कहते हैं ना जिंदाबाद, तो उसने ये कहा कि जिंदाबाद उसकी जय हो हुबल की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जवाब दो। हुबल उनका बड़ा बुत था, तो साहबा ने पूछा, या रसूल क्या जवाब दें? आपने फरमाया, कहो अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह आला और बरतर है। तो अबू सुफियान ने फिर नारा लगाया, लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए तो उज्जा है, तुम्हारे लिए तो कोई उज्जा नहीं, यानी तुम हमारा तो इतना बड़ा बुत हमारे साथ है, तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारे साथ उज्जा तो नहीं है। तो उज्जा उनके लिए बड़ा बड़ी चीज थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं है। तो सहाबा ने फिर ये कहा था, और इसके अंदर ये इतनी बड़ी बात है ना कि अल्लाहु मौलाना, ये बात कहने से ही इंसान को इतनी ढारस मिल जाती है, इस बात का यकीन कितना सुकून दिल में उतार देता है कि हम अकेले थोड़ा ही हैं, हम अकेले थोड़ा ही, हमारा मौला तो जहानों का मालिक है, वो जहानों का जो बादशाह है ना वो हमारे साथ है, वो हमारा सपोर्टर है, हमें किसका बात का फिर डर? जिसके साथ अल्लाह हो गया फिर उसको तो किसी की भी जरूरत नहीं। और इसमें पता चलता है अल्लाह ताला के साथ एक बहुत क्लोज ताल्लुक जो सिर्फ मोमिन का हो सकता है, कि वो अल्लाह को अपना मौला बनाता है, बाकी लोगों ने तो किसी को इसको क्या क्या बनाया हुआ है। और फिर इंसान जब ये कहता है ना तो उसकी नजर अल्लाह पे भी होती है कि अल्लाह, जब मैंने सारों को छोड़ के तुझे मौला बना लिया ना, फिर तू मुझे तन्हा ना छोड़ना, मैंने अकेले तुझ पे भरोसा किया, बाकी सारे सहारे छोड़ दिए, तो अल्लाह हु मौलाना बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, और जिसका मौला अल्लाह हो उसको फिर और कोई मौला नहीं चाहिए। फिर वो भी यार और मददगार नहीं है। ठीक है, तुम चाहे जिसको मर्जी बना लो, उज्जा ले लो, सारे ले लो, तुम जितनी मर्जी सुपर पावरें तुम्हारे साथ हो जाएं, सब ले लो, सब तुम्हारे साथ हो जाएं, लेकिन जब किसी का सहारा और मददगार खुद अल्लाह की जात हो तो फिर कोई उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वह हुआ खैरुन नासिरीन, फिर उससे ज्यादा बेहतर मदद करने वाला और कौन हो सकता है, वो बेस्ट है मदद करने वालों में। ये वो कहते थे ना अल्लाह साथ होता है इनके तो इनके साथ ये होता, फरमाया नहीं वो तो सब आजमाइश थी, असल में तो अल्लाह है मददगार, अल्लाह वलीयुल्लदीन आमन, अल्लाह मददगार है, वली है वो। सनुल्की अन करीब हम डाल देंगे फी कुलूबिल्लदीन कफर, उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया क्या डाल देंगे, अर्रौब, रोब डाल देंगे, बीमा अशरकू, इस वजह से कि उन्होंने शिर्क किया, बिल्ला अल्लाह के साथ, मा लम युनज़िल बिही सुल्ताना, जो नहीं उसने नाजिल की इसकी कोई दलील, किसकी शिर्क की, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब हम उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोब डाल देंगे, और यही हुआ, काफिर लोग जब मुड़ के गए, और मैंने आपको बताया था हमराउल असद में जाके वो रुके, उन्होंने कहा हमने तो इनको कुछ किया ही नहीं, हमें तो वापस जाना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए बिल्कुल, ये क्या फतह हुई, ये तो कोई जीत ना हुई, कि वो तो वही मैदान जंग में थे हम आ गए वहां से, लेकिन फिर ऐसा रोब उनके दिल में पैदा हुआ, और ये रोब किस वजह से होता है, क्या वजह होती है रोब की, शिर्क, शिर्क होती है रोब की वजह, और इस शिर्क की अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी इस कायनात में। तो इसका मतलब है कि जो मुवाहिद होता है ना तौहीद वाला, वो कभी डरता नहीं है, वो कभी रोब में नहीं आता, इसलिए कि उसका ईमान अल्लाह के ऊपर है, और जो मुशरिक होता है वो कभी इससे डरता है कभी उससे डरता है, इसलिए उसलिए कि वो उसको होता है ना ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा वो मुझे कुछ कर देगा, उसका डर हर एक चीज से, लेकिन जो मुवाहिद है तौहीद वाला है उसको किसी से खौफ नहीं होता, रोब नहीं, रोब में नहीं आता, वो मरऊब नहीं होता, तो उसको पता होता है मेरे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब तौहीद का असर है, और आज हम देखते हैं जब कि मुसलमान डर रहे हैं, कभी इससे डर रहा है कभी उससे डर रहा है, कभी दुनिया के कोई ताकतों से डरने लगे हुए, कभी लोगों से डर रहे हैं, कभी हर एक का खौफ अगर दिल में तारी है, तो इसकी जानते हैं वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि तौहीद का अकीदा हमारा सही नहीं है। अगर तौहीद सही हो दिल के अंदर तो फिर तौहीद परस्त तो खौफजदा होता ही नहीं, ठीक है ना। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आपको पता है ना, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा रोब दिया था एक महीने की मुसाफत से दुश्मन डरता था, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब की नहीं बात हो रही, यहाँ पे आम अहले ईमान के रोब की बात हो रही। तो अहले ईमान जो तौहीद वाला होता है ना मौत से डरता है ना किसी ताकत से, तो कौन सी चीज है जो उसको कुव्वत देती है, तौहीद, और बुजदिली आती है शिर्क की वजह से। ठीक है, तो जब आप आज उलट हालात देख रहे हैं कि मुसलमानों के दिलों में काफरों के रोब हैं और उनकी दहशत छाई भी है, तो आप ये देख लेना कि हमने ईमान में अपने कहाँ कमी की हुई है, हमारे तौहीद के अकीदे में कमजोरी कितनी है। इंसान उतना ही नडर होगा जितनी तौहीद उसकी स्ट्रांग होगी, और उतना ही डरपोक होगा जितनी तौहीद में वीकनेस होगी। ठीक है, और तो शिर्क की कोई इस दुनिया में दलील नहीं, तौहीद की तो दलील हर तरफ है, आप आसमान की तरफ देखें, जमीन की तरफ देखें, फल पौधों की तरफ देखें, हर तरफ आपको पता चलेगा कि सब गवाही दे रहे हैं कि एक ही है कोई हमें बनाने वाला और चलाने वाला, लेकिन शिर्क की कोई दलील नहीं इस कायनात में। वह हुमुन्नार, जो मुशरिक है उसका ठिकाना जहन्नुम है, और भी समस व जालिमीन, और कितना बुरा ठिकाना है जालिम का, ये जालिम ही है जो शिर्क, जो सबसे बड़ा जुल्म जो है ना वो शिर्क है, कितना बुरा, ये बुराई के लिए कहा गया। जब एप्रिसिएशन के लिए कहा जाता है तो क्या क्या, क्या कहा जाता है? वो उसके लिए भी एक कलमा है, किसी चीज को एप्रिशिएट किया जाता है। नियामा, नियामा अजरुल आमिलीन जैसे हमने पढ़ा, इस तरह यहाँ पे बुराई के लिए बेसा, तो ये ऑपोजिट हो गए। वलकद सदककुमुल्लाहु वअदहु, वो उन्होंने कहा ना, इनके पास कहाँ से कोई, देखो ये तो कहते थे हमें फतह मिलेगी, ये तो ऐसे कहते थे कि अल्लाह का वादा है कि वो हमारी मदद करेगा, और तो ये क्या बात हुई, इनके तो कोई मदद नहीं हुई। तो अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा किया, अल्लाह ताला फरमाए तो मुझे नहीं कह सकते कि मैंने नहीं अपना वादा, मैंने तो अपना वादा पूरा किया, तुम्हें फतह अता फरमाई, और वाकई मुसलमानों को फतह मिल गई थी, ऐसी फतह, वो तो भाग रहे थे। यानी कि इसमें आता है कि सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि उस वक्त जिस वक्त के काफिर भाग रहे थे, उनको यानी जो उनको जोश दिलाने वाली औरतें बड़ी उनके अंदर वो साथ अपने लाए हुए थे, जो बड़े दफ बजा बजा के जो उनकी शुरू के अंदर बड़ी हौसला अफजाई कर दी, वो भी अपने कपड़े उठा के ऐसे भाग रही थी कि उनकी पाजेबें नजर आ रही थी, वो ऐसे सरपट दौड़ रहे थे। यार मुसलमान उनको मार भी रहे थे, गनीमत का सामान भी लूट रहे थे। तो अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा किया, इस्तहसूनहुम बिइज़्निही, जब तुम उनको कत्ल कर रहे थे उसके इज़न से, मैंने आपको बताया कि वो तो उनको खत्म कर रहे थे। हत्ता इदा फशिलतुम, यहां तक कि जब बुजदिली दिखाई, हिम्मत हार दी, यानी कमिटमेंट अपनी छोड़ दी ना, वतनाजा तुम फिल अम्र, झगड़ा किया तुमने मामले में, कैसे बुद्धि दिखाई, कैसे हिम्मत हार दी, कि जिस वक्त नाफरमानी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, असल में तो तावील उन्होंने कर ली ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हुक्म दिया था, नहीं उन्होंने तो ये कहा था कि अगर शिकस्त होती है तो फिर तुमने यहां से नहीं हिलना, तो उन्होंने तावील कर ली, तो शिकस्त थोड़ी हुई, अब तो जंग खत्म हो गई है, अब तो हम जीत भी गए हैं। तो जब उन्होंने उस वक्त इस कमिटमेंट को छोड़ दिया, इताअत में कमजोरी की, और उसके बाद तनाजा तुम फिल अम्र, आपस में उनके झगड़ा शुरू हो गया। वहां पे क्या झगड़ा जमरे रमात पे हो रहा था, कि अब्दुल्ला बिन जुबैर कह रहे थे कि नहीं जाना, और वो कह रहे थे नहीं। उन्होंने जब अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ा जाता है, नबी की इताअत से मुंह मोड़ा जाता है, तो उसमें इन लोग कोई तावील ही करते हैं। साफ तौर पे कोई नहीं कहता कि मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ता हूँ, उसमें कोई ना कोई ऐसी बात निकाल लेते। तो तुमने झगड़ा किया, आपस में इख्तलाफ किया, वा असई तुम मिन बादी मा अराकुम मा तुहिब्बून, और नाफरमानी की तुमने इसके बाद जो तुम्हें उसने दिखाया, जो तुम पसंद करते थे। क्या दिखाया, किसने दिखाया, अराकुम, अल्लाह ताला ने तुमको दिखाया क्या जो तुम पसंद करते थे, क्या पसंद करते थे, फतह भी मुराद हो सकती है और माले गनीमत। जब तुम्हें माले गनीमत नजर आया, तब तुमने नाफरमानी की और तुम उतर गए, ठीक है। तो अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, हत्ता कि तुमने ये सा जब तुम मार भी रहे थे उनको, हत्ता कि तुमने ही तो ये काम किया, तुमने तनाजा किया, तुमने नाफरमानी की, तुमने बुजदिली दिखाई, उसके बाद भी भागने शुरू हो गए। तो इससे पता चलता है कि जो तनाजा होता है ना, आपस का इख्तलाफ, वो इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये जो एक मैंने आपको बताया था अभी पहले भी, कि ये एक हदीस कोट की जाती है, मौजू हदीस है, इट्स फैब्रिकेटेड, कि मेरी उम्मत का जो इख्तलाफ है वो रहमत है, ये तो है ही नहीं है कोई हदीस। इख्तलाफ कैसे रहमत हो सकता है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, फूट पड़ी हुई है, ये कोई रहमत है? तो जब आपस के अंदर तुमने एक दूसरे के साथ इख्तलाफ के बजाय इसके कि अगर एक तावील हो भी गई थी तो अपने अमीर की बात सुननी चाहिए, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया, अमीर की इताअत जरूरी थी, उस वक्त उन्होंने अपने अमीर की बात को छोड़ दिया और वो उतर गए, जिसकी वजह से सारा नुकसान उठाना पड़ा। जबकि अल्लाह ताला ने फतह दे दी हुई थी, तो ये यानी तुम्हारी अपनी कमजोरी की वजह से, तुम्हारी अपनी एक रसूल के हुक्म को तोड़ने की वजह से, तुम्हारे अपने इख्तलाफ की वजह से, ये रीजंस बने तुम्हारी शिकस्त के। तो अब हमें पता चला कि कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जब किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा होता है, कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, शिकस्त होती है। ये देखें, एक हुक्म की नाफरमानी की थी, खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। और आज हम अंदाजा करें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने हुक्मों को तोड़ते हैं। और कोई कुछ कहे तो आगे से कहते हैं तो क्या हुआ, हदीस ही तो है ना, तो क्या हुआ, सुन्नत ही तो है ना। और इख्तलाफ में तो हम इतने माहिर हैं कि जहां पे देखो झगड़े, जहां पे देखो झगड़े। देखिए एक बात होती है, पहले भी आपको बताया था, इख्तलाफ राय होने में कोई हर्ज नहीं, सबकी जाहिर है एक राय तो नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता आपकी पूरी क्लास को पूछा जाए, किस दिन क्लास ली जाए तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। जाहिर है अल्लाह ने सबको अकलें दी हैं, अपने अपने मुताबिक सब सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जिस वक्त के इख्तलाफ के बाद इंसान ग्रुप बंदियां शुरू कर दे, एक दूसरे के ऊपर अपनी तोपों के मुंह कर लें और फिर एक दूसरे की मुखालफत शुरू कर दें, ग्रोह बंदियों करने लगे, ग्रोहों में बट जाएं, दिलों के अंदर रख के बोझ और उस काम को ही छोड़ दें, हम नहीं करते ये काम, फलाने ने हमें ये कह दिया। तो तनाजा जो होता है ना, झगड़ा, ये चीजों को फॉल अपार्ट कर देता है, मिशंस और इनमें लोगों को मिशन पूरे होने को नाकाम बना देता है। तो तनाजों से बचना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से देखें, एक जगह पे मुझे अब याद नहीं है कौन सी वो जंग थी कि जिसमें सहाबा कराम जब गए तो कई दिन जंग लड़ते हुए होगा, लेकिन उनको फतह नहीं मिल रही थी उस वक्त। फिर उन्होंने कहा हम कौन सी कोई ऐसी सुन्नत तो नहीं छोड़ रहे, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे, कि क्या वजह है कि क्यों नहीं हम में गलबा अल्लाह की तरफ से मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मिसवाक नहीं कर रहे, मिसवाक की सुन्नत हमने छोड़ी हुई है। तो सारे के सारे पानी के पास बैठ गए और मिसवाकें शुरू कर दी। दुश्मन के जासूसों ने जब देखा तो उन्होंने जाके उनको इतला दी कि वो लोग तो आदमखोर हैं, वो तो अपने दांत तेज कर रहे हैं तुम्हें खाने के लिए। दुश्मन के हौसले पस्त हो गए तो वहीं से भाग गए। देखो एक नबी की सुन्नत, ये इत्तेबा ने कितना काम दिया। तो सुन्नतें छोड़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ना, खुल्लम खुल्ला जिन बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो हम में से नहीं जो ये करता है, या फलां के ऊपर लानत है, या फलां के लिए जहन्नुम है, तो कहते हैं ये तो हदीस है ना, ये तो हदीस है तो कोई बात नहीं। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज को रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जो चीज रोके उसे रुक जाओ। हम कहते हैं नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुरान में तो नहीं है ना, कहते हैं कुरान में तो नहीं, हदीस है तो कोई बात नहीं। तो कितनी नाफरमानियां आज हो रही हैं, फिर इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमें फतुहात मिले, हमारे साथ अल्लाह की मदद आ जाए, ऐसे नहीं होता। ये सहाबा थे, अल्लाह के चुने हुए लोग, फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को के पर उनकी पकड़ की। आप सोचते हैं कि हमारी किसी बातों के ऊपर पकड़ नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत की उसने भी मेरी इताअत की, और जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो अमीर की भी इताअत उनको करनी थी लेकिन उन्होंने नहीं की। तो ये सब रीजंस बने। अब हमें यहां से पता चलता है कि कौन सी चीजें रीजंस बनती हैं जब मिशन नाकाम होते हैं, जब फतह भी हो जाए तो शिकस्त में बदल जाती है। और फिर नाफरमानी कब की, जब उसने तुमको दिखाया जो तुम पसंद करते हो, जो तुम पसंद करते थे ना, वो जब तुम्हें नजर आ गया माले गनीमत, क्योंकि आगे आ रहा है मिन को मई उरीद दुनिया, दुनिया तुम्हें नजर आई तो तुम भाग पड़े, तुमने सोचा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और आज भी ऐसा होता है, लोगों को जॉब मिल जाती है कुरान की क्लास छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं अब जॉब मिल गई है, अल्लाह दिखाता है ना, जिससे तुम मोहब्बत करते हो दिखाया तो फिर कोई दीन याद ही नहीं। तो मिनकुम मन युरीदु दुनिया मिनकुम मन युरीदु आखरा, कुछ तुम में से ऐसे हैं जो दुनिया चाहते हैं, अभी भी उनके अंदर दुनिया की हिरस मौजूद है, और वो थे जो उतर गए, और मिनकुम मन युरीदुल आखरा, मगर सब ऐसे नहीं थे, कोई ऐसे भी हैं जो आखरत चाहते हैं, और वो अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथी जो रह गए थे, जो फिर सबसे पहले शहीद किए गए। तो अल्लाह ताला निकाल लेता है जो दिलों के अंदर होता है ना, अल्लाह ताला उसको बाहर ले आता है। अल्लाह ताला को कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो बातों से कह दिया और बातों से इसको खुश कर दिया जाए, मुझे तो बस आखरत चाहिए। ये अल्लाह दिखा देता है, सामने आ जाता है। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियबतलियकुम, फिर उसने फेर दिया तुमको उनसे ताकि वो आजमाए तुमको। पहले दुश्मन भाग रहा था और तुम पीछा कर रहे थे, उसके बाद दुश्मन पीछे से आ गया और तुम आगे थे। अल्लाह ताला ऐसे हालात लाया कि लियबतलियकुम, ताकि वो आजमाए तुमको, पता चल जाए साबित कदम कौन है और कौन भाग जाने वाले हैं। तुम कहते थे तुम्हें शहादत चाहिए, तुम मौत की तमन्नाएं करते थे, वो अब तुम्हारे सामने आया, अब तुम क्या करते हो। लेकिन सब कुछ कहने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वाला कद अफा अनकुम, अल्लाह ने माफ कर दिया तुमसे। यानी इन सब सहाबा से जो भी गलती हुई, जो उतरे थे या जो भागे या वो, उन सब को माफ कर दिया। और इस माफी के बाद अब कयामत तक कोई भी इन सहाबा के ऊपर ये ताना नहीं दे सकता कि वो तो भाग गए थे या वो क्यों उतरे। जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया, हम कोई नहीं होते कि हम उनके ऊपर उंगलियां उठाएं, उनकी बुराई करें। और यहां से हमें यह भी पता चलता है कि देखिए, जब अंदर इखलास होता है ना, अंदर उनके तो खलूस था, ठीक है, वो उनसे एक जज्बाती एक फैसला हो गया या स्पर ऑफ द मोमेंट में वो उसके अंदर आ गए, लेकिन उनके अंदर खोट नहीं था, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। हालांकि एक नुकसान कितना बड़ा उनकी वजह से हुआ, फिर भी माफ कर दिया। हमारी किसी चीज का कोई नुकसान हो जाए किसी से, तो हम तो सारी जिंदगी नहीं छोड़ते, मुझे नहीं भूलता वो, उसने ये नुकसान किया था, मेरा ये हो गया था उस वक्त, उसकी वजह से हुआ था, अल्लाह ने माफ फरमा दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, अल्लाह बड़ा फजल व करम करने वाला है ईमान वालों पर। यानी अगर कोई ईमान वाला है ना, ईमान सच्चा होना चाहिए, उसके बाद गलतियां हो जाती हैं लोगों से, सहाबा कराम से भी हो गई, क्योंकि गलती से पाक कोई नहीं है, ठीक है, चाहे वो कितना भी नेक हो जाए, वो गलती से पाक नहीं है। लेकिन इनके ईमान सच्चे थे ना, तो अल्लाह ताला ने जाने दिया। हम भी ये सोचा करें, अगर कोई मसलन है, कोई नेक बंदा है, हमें पता है नेक है, ये अच्छा है, मुखलिस है, पर इससे कहीं गलती हो जाए तो उसको भी छोड़ भी दिया करें कभी, और उनकी गलतियों को हम और हाईलाइट करते हैं कि नहीं देखा इसने ऐसा किया, ये तो बड़े नेक बनते थे, ये तो बड़े कुरान वाले बनते थे, इन्होंने ऐसा किया, तो नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई नेक बंदों से भी गलतियां हो जाएंगी, वो कोई फरिश्ते तो नहीं है। तो अगर वाकई ईमान वाले हैं तो अल्लाह भी माफ कर देता है।